पहले भले ही ओबेरॉय फैमिली को आरफ के इरादे अजीब लगे हों कि वो डील के चलते मिस्टर ओबेरॉय की बेटी से शादी करना चाहता हो, लेकिन बाद में अर्जुन सिंह ओबेरॉय सहित उनकी पूरी फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां तक कि आरफ से बात करने के बाद आशी भी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। वहीं आयु इन सबसे बेखबर कमरे में थी। शालू ने उसे नहाकर चेंज करने के लिए कहा था। आशी को लगा कि आयु को वहां देखने के बाद मिस्टर ओबेरॉय को गुस्सा आया होगा, इसलिए वो आरव को मनाकर अपने कमरे में लेकर गई ताकि वो मिस्टर ओबेरॉय से बात कर सके। आरव और आशी मिस्टर ओबेरॉय से बात करने के लिए आशी के कमरे की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें सामने से शालू आती हुई दिखाई दी। शालू ने आरव और आशी को साथ में देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों ने बात कर ली, मैं वहीं पर आ रही थी। आशी बताओ तुमने क्या सोचा है, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे डिसीजन पर ही टिका हुआ है। कुछ भी कहने से पहले आशी ने आरव की तरफ देखा, फिर उसने नजरें झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। आशी के हाँ कहते ही आरव ने राहत की सांस ली और फिर आशी से कहा, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो आई प्रॉमिस तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। आशी थोड़ी शाई टाइप की थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गई। उसके बिहाफ में शालू ने कहा, अब क्या सारे वादे शादी से पहले ही कर लोगे? डिनर का टाइम हो रहा है, नीचे चलो। अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना ताकि कल वो आकर तुम दोनों का रोका कर दे। इसकी क्या जरूरत है, मैं कायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट में अबाउट डिले नहीं चाहिए, आरव ने सीधे सीधे कहा। शालू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आशी ने शादी के लिए हाँ जरूर कह दी थी, लेकिन शालू का आरव का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से साफ पता चल रहा था कि वो ये शादी प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रहा था। शालू जिस तरह से आरव को देख रही थी, आशी सब समझ रही थी। उसने बात को टालने के लिए कहा, आयु कहाँ है मॉम? जैसे ही आरव ने शालू के मुंह से आयु शब्द सुना, एक पल के लिए वो किसी और दुनिया में खोसा गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया और उस मूवमेंट से निकल आया था। यहीं पर है और तुम्हारे डैड ने उसे कुछ नहीं कहा। तुम दोनों बहनें तो इस तरह डरती हो जैसे वो तुम्हारी जान ले लेंगे। डाइनिंग टेबल पर आ रही है वो, चलो तुम दोनों, शालू ने सख्त आवाज में जवाब दिया। उन दोनों को आने का बोलकर शालू वहां से चली गई थी। वहीं आयु अंदर कमरे में थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर निर्वाण का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर आयु ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से निर्वाण की सख्त आवाज आई, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ग्रुप से पता चला तुम बीच पोस्टमार्टम से चली गई थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस सब्जेक्ट की मौत काफी अलग तरीके से हुई है, इसीलिए मैंने स्टडी करने के लिए खास तुम्हारे लिए परमिशन ली थी और तुम उसे बीच में छोड़कर चली गई। निर्वाण अभी अभी एक सर्जरी से आया था, इसलिए वो अपने हैंड वॉश कर रहा था। वो लगभग 28 साल का था, लगभग 6 फीट हाइट, गेरुआ रंग, गहरी भूरी आंखें, बिल्कुल फिट फिजिकल अपीयरेंस थी उसकी। हाँ, मैं अपने घर पर आई हुई हूँ, आयु ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आयु के घर जाने की बात सुनकर निर्वाण को झटका सा लगा। उसने हैरानी से पूछा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपने घर में नहीं आने देते, फिर तुम वहां क्या कर रही हो? लिसन, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना भी केयरलेस मत रहा करो, कहीं उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुछ कर दिया तो। निर्वाण की बातों से आयु के लिए केयर साफ नजर आ रही थी। वो स्ट्रिक्ट जरूर था, लेकिन आयु को पसंद भी करता था। पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं यहीं पर रुक रही हूँ। सर, क्या मैं उन्हें हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दूँ? आयु ने हिचकिचाते हुए पूछा। आयु की हिचकिचाहट जायज थी, निर्वाण बिल्कुल परफेक्ट था। इतनी कम उम्र में वो एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन था। ऊपर से दिखने में भी हैंडसम होने की वजह से स्टूडेंट, कलीग, डॉक्टर्स तक उसे पसंद करते थे। ऐसे में जिसे भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था, सबको काफ़ी हैरानी होती थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। निर्वाण ने तुरंत जवाब में कहा, ठीक है, बता देना। और मैंने तुम्हें कहा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा करो, तुम स्टडीज़ में अच्छी हो, एक अच्छी डॉक्टर भी बन पाओगी, लेकिन जब भी मेरे सामने आती हो इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? 2 महीने से हम दोनों साथ में हैं और अभी भी तुम मुझे सर कह रही हो। पता नहीं क्यों अपने आप निकल जाता है। मैं आपकी जितनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर आपके आसपास होती हूँ तो मन करता है कि आपके जैसी बन जाऊँ, आयु ने सीरियस टोन में कहा। वो निर्वाण के साथ एक अलग ही शख्स होती थी, जहाँ वो उसी की तरह मैच्योरिटी से बिहेव करने की कोशिश करती थी। उसके दिल में निर्वाण के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। आयु की बातें सुनकर निर्वाण के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने उसी अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, पर जैसी हो वैसी ही रहो। अगर मुझे अपनी तरह कोई परफेक्ट इंसान ही चाहिए होता तो अब तक मैं सिंगल नहीं होता। मैं फ्लैट पहुंच रहा हूं, वहां से जल्दी आना। निर्वाण ने आगे आयु की बात नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया। वहीं आयु ने धीरे से कहा, हे भगवान, क्या सोचकर मैं इनके खाली घर में शिफ्ट हो गई, वहां इतना कचरा फैला हुआ है, ये वहां जाएंगे तो क्या सोचेंगे? निर्वाण को फ्री होने में टाइम लगेगा, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे मुझे जाकर सफाई करनी होगी। आयु ने सिर्फ अपने हाथ और मुंह को ही धोया था। वो नहाने के लिए जा ही रही थी कि निर्वाण का कॉल आ गया था। ऐसे में जल्दबाजी में आयु को चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। उसने अभी भी वही शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखा था, लेकिन अब उसके बाल खुले थे। बाहर निकलने से पहले आयु ने खुद को आईने में देखा और अपने बालों को सेट कर लिया। उसने खुद को देखकर कहा, देखो वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर प्लीज थोड़ा तो तरीके से रहा करो, घर को इतना फैलाने की क्या जरूरत थी? और खुद को देखो, मॉम बिल्कुल ठीक कहती है, कोई मेरे साथ 2 दिन भी नहीं रह पाएगा। आयु ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और बाहर आने के लिए दरवाजा खोला। आयु जल्दबाजी में आशी के कमरे से जा रही थी कि तभी वो आरव से जा टकराई। आशी पहले ही नीचे जा चुकी थी जबकि आरव अकेला था। वो अपनी फैमिली को कॉल करने जा रहा था। आई एम सो सॉरी, वो मैं जल्दबाजी में थी, आयु ने आरव की तरफ देखे बिना जवाब दिया। तो वहीं आरव का ध्यान भी अपने मोबाइल में था। आरव ने बेपरवाही से सिर हिलाया और बिना आयु की तरफ देखे कहा, इट्स ओके मिसेस खुराना, पर देख कर चला करो। आयु वहां से जा ही रही थी लेकिन उसने आरव के मिसेस खुराना बुलाने पर आयु के कदम वहीं रुक गए। तो वहीं आरव को भी हैरानी हो रही थी कि उसने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, फिर उसे मिसेस खुराना कहकर क्यों बुलाया, वही नाम जो वो अक्सर नींद से उठते ही चिल्लाकर बोलता था। शायद आयु का हल्का सा टच ही आरव के लिए उसे पहचानने के लिए काफी था।